ओम शांति। हम सब के बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजेंद्र प्रसाद जी। क्या तो ज्ञान का सागर प्राण आधार प्यारे बाबा हैं, और यदि कोई दूसरा नाम मन बुद्धि में आता है तो वो है ज्ञान सागर के सारे रहस्यों को अपने जीवन में समाये हुए मास्टर ज्ञान सागर आदरणीय भ्राता राजू जी। हम सभी ब्रह्मावर्त प्रतिदिन आपकी पालना लेते हैं, ऐसे पालना से अनुग्रहित होकर हम सभी ब्रह्मावर्त आपका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी, उत्तर प्रदेश की धरनी कानपुर से, उसके भी पास एक गांव से आपने लौकिक जन्म पाया। बाल्यकाल से ही आपको ये स्वर्णिम अवसर मिला कि आप आध्यात्मिक चिंतन मनन करने वाले परिवार में जन्म लिया, और आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को अध्ययन करने लगे। आपने 1972 से इस पढ़ाई को, अलौकिक पढ़ाई को अपने जीवन में जोड़ा, और 1976 में आपने दीदी मनमोहिनी जी से सिंधी भाषा सीखकर हिंदी और सिंधी मुरली को टाइप करना शुरू किया, और आपको मुरली के अंदर से सार वरदान निकालने का, जैसे बाबा से वरदान प्राप्त हो गया और मुरलियों में उनकी सेटिंग करके आपने भेजना शुरू किया। आपको बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा से दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है। अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते थे तो आप बाप दादा की आवाज के साथ मुरली को टाइप करके, तैयार करके और देश विदेश की सेवाओं पर भेज देते थे। आप सतत ज्ञान का अध्ययन, राजयोग की गहन अनुभूति और अपने क्लासेस प्रवचन के द्वारा विश्व की लाखों लाख आत्माओं को लाभान्वित करते रहे हैं। आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि पुस्तकों का भी लेखन किया है। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयर पर्सन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विंग के अंदर गवर्नमेंट के साथ भारत देश के किसान के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की हुई हैं। हमें आपको विदित हो कि तपोवन के माध्यम से आप शाश्वत योगी खेती की योजना और दत्तक ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का कुशल संचालन किया हुआ है। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपके देख रेख में चल रहा है। आदरणीय दादियों के ऑफिस के जितने भी पत्रों का लेखन 1976 से चल रहे हैं, तब से लेकर आज तक आप ही दादी जी की तरफ से पत्र हम सब के पास भेजते हैं, चाहे वो पत्र पुष्प हो और चाहे अन्य कोई विशेष यज्ञ की सूचना हो। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रत्न प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आपने विश्व भर में बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए भ्रमण किया है, पांचों खंडों में, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया गया है। विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यूज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को आपने तीव्र गति प्रदान की है। ऐसे बाबा के अनमोल रत्न आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजेंद्र प्रसाद जी, भ्राता राजू जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो वो मुरलियों की खान स्वयं हैं, आज सर्व खजानों से सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाने के लिए मुरली से हम खजाना कैसे प्राप्त करें, इस विधि पर हमें मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय भ्राता जी। पुनः एक बार हम जोरदार एक हाथ की ताली से उमंग उत्साह के साथ अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
ओम शांति। आप सभी बाबा के घर में, मैं समझता हूँ, पहली बार भट्टी कर रहे हैं। बेंगलोर, आंध्रा के भाई बहने दिखाई दे रहे हैं। इतनी दूर से पांडव भवन की तपस्या भट्टी में आप सब आए हैं। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और हिंदी भी समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, बहुत अच्छा है। बाबा ने हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए केवल दो ही विधियां बताई हैं। एक बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा की मुरली का अच्छा अध्ययन करो, और दूसरा बीच बीच में बाबा को बहुत प्यार से याद करो। पढ़ाई और याद, यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन है। जिस दिन से हम सबका पढ़ाई का कोर्स हुआ, पूरा हुआ, मुरली सुनना हम सबने शुरू कर दिया। और बाबा के महावाक्य ही मुरली है। जो कुछ बाबा ने बच्चों के साथ चिट चैट की, रूह ध्यान की, उसी की मुरली बन गई। बाबा कई बार कहते हैं कि डायरेक्ट सुनना नंबर वन है, टेप से सुनना नंबर दो है, और लिखत में पढ़ना नंबर तीन है। हम सब तीन वाले अभी बैठे हैं। कोई कोई टेप से सुन लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य जो साकार में चले, अगर उसको हम पूरा ही शब्द बाई शब्द टाइप करें। एक बार मैंने ट्रायल किया था, आधा घंटे की मुरली कम से कम 8-10 पेज की बनती है, क्योंकि बाबा बहुत मीठे बच्चे 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 कह करके हर बात में, हर लाइन में कई बातें रिपीट भी हो जाती हैं। बहुत स्पीड में बाबा बोलते थे, तो उस समय बहुत शार्ट में बहनों ने नोट्स लिए। जो बाबा की मेन पॉइंट्स थी वो नोट्स लिए गए और उसी आधार से मुरली तैयार की गई। बाबा ने मुरली में चार ही सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने पढ़ाई है, उसमें अपने बच्चों को अपने समान मास्टर मुरलीधर बना दिया। अगर किसी ने मुरली को अच्छी तरह से स्टडी किया, जैसे हम सब ने मम्मा के बारे में सुना, दीदी या दादी के बारे में सुना है, इनके अध्ययन का और कोई भी दूसरी पुस्तकें नहीं थी, केवल मुरली थी। एक बार नहीं, पांच बार, दस बार जब समय मिला तब उनके हाथ में मुरली होती थी। मुरली से ही पढ़ाई का, क्लासेस का सार निकाल लेना, हर टॉपिक पर उसी से पॉइंट्स निकाल लेना। तो हमारे बड़ों ने यही सिखाया कि मुरली ही तुम्हारे ब्राह्मण जीवन के लिए संपूर्ण खजाना है, पूरा भोजन है उसके अंदर। इसलिए जब से हम आप सभी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा कहते हैं बच्चे रेगुलर बनो और पंचुअल बनो। तो कौन कौन यहाँ पर बैठे हैं जो बाबा की मुरली में रेगुलर और पंचुअल अपने को समझते हैं? हाथ उठाओ। रेगुलर और पंचुअल, समझ रहे ना? समय पर आना, क्योंकि आधी मुरली के बीच में आया या बीच में उठ गया तो उसको पंचुअल नहीं कहेंगे। और जिस दिन से बाबा के बच्चे बने, जब तक इस शरीर में हैं, तब तक बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। कोई कोई कहते हैं मुरली तो वही है, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। इतना फोर्स आत्मा समझ करके याद करो, इस पर क्यों क्यों इस पर याद कर फोर्स देता है बच्चे? आज भी मुरली में कितनी बार अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, क्योंकि जितनी भी बुराइयां इस जीवन में आई, जो भी विकार प्रवेश हुए, जो भी आत्मा से इन कर्म इंद्रियों के द्वारा विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, उसका मूल कारण बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान रहा। अपने को भूल गए, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मुझे कर्म इंद्रियां पार्ट बजाने के लिए मिली हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ, इनको मैं आर्डर प्रमाण चलाऊं, इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए बाबा रोज पक्का कराते हैं। खुद ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत करके मैं आत्मा हूं पाठ पढ़ करके अपने आप को इंद्रिय जीत बना लिया। हमारी सब कर्म इंद्रियां शीतल, पवित्र, स्वच्छ तभी बनेंगी जब हमने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है। बात करो, देखो, चलो, फिरो, कर्म करो, कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ, करने वाली कर्म इंद्रियां अलग है। तो बाबा ने ये जो पाठ हम सबको पढ़ाया, हम रोज पढ़ रहे हैं। अभी आपको चेक करना होगा कि सचमुच देही अभिमानी बन गए हैं, आत्मा अभिमानी बने हैं, या हम दूसरों को तो ज्ञान दे देते हैं, अपने को आत्मा समझो, आप एक आत्मा हैं, और हम कहीं न कहीं किसी न किसी कर्म इंद्रिय के अधीन हो जाते। तो आज बाबा बड़े प्यार से कहते थे ऐसे पंडित जी नहीं बनो, पंडित बन जाते ना, दूसरों को तो ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुनाते, अच्छा लेक्चर कर लेते, लेकिन जब तक वो खुद देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। सुन लेते हैं, लोग भी सुन लेते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी से भी पूछो ना, सब ये कहेंगे बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्लास कराया, सभी ने बहुत अच्छा कराया। लेकिन मैं अच्छा बन जाऊं उसके लिए शक्ति चाहिए। तो चार सब्जेक्ट, पहली सब्जेक्ट से जो हमें खजाना मिला, ज्ञान की सब्जेक्ट से विजडम मिली, दिव्य बुद्धि मिल गई। आप सब देखना, अगर हमने ज्ञान को यथार्थ समझा है तो हमारी बुद्धि में दिव्यता कहाँ तक आई है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, बाबा ज्ञान सागर ने अपने बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से ज्ञान दे करके विजडम दे दी, बुद्धिमान बना दिया। आप सब इस बात पर चिंतन करना, क्या मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ? भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। योगी नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, क्योंकि जिसने ज्ञान को जीवन में धारण कर लिया, समझ लिया, उससे कभी कोई कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं हो सकते। कभी वो आत्मा किसी बंधन में नहीं बंध सकती। नए नए बंधन, एक तरफ हम बंधन काटने में लगे हुए हैं, इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, योग करते हैं कि हमारे बंधन कट जाएं, और दूसरी तरफ ब्राह्मण बनने के बाद भी नए नए बंधन बना लेते हैं। कैसे बनते हैं बंधन? कभी नोट किया है बंधन कैसे बनते हैं? पुराने काट रहे हैं और नए बना रहे हैं, इसलिए क्या होता, योग नहीं लगता, नया बंधन बनता जा रहा है। किसी भी आत्मा की तरफ, उनकी विशेषताओं की तरफ, उनके गुणों की तरफ, उनकी सेवाओं की तरफ अगर हम आत्माएं प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई, बंधन बन गया। एक की तरफ आकर्षण होने की बजाय अगर किसी देहधारी की तरफ हमारी बुद्धि चली गई, ये बहुत अच्छे हैं, विशेष उनसे स्नेह हो गया, विशेष हमने लेन देन करना शुरू कर दिया, ज्ञान है ये आत्मा है, पाठधारी है, इनकी जो विशेषताएं हैं ये प्रभु देन है, भगवान ने इनको दी है। लेकिन सब ज्ञान होते हुए भी इतना ऊंचा ज्ञान रोज बाबा सुनाता है, पहला पहला पाठ पढ़ाया है मुरली के अंदर, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को, सब संबंधों को भूलो, माँ में कम याद करो। पाठ तो पढ़ लिया हम सब ने, भूले हैं कहीं न कहीं, देह में, संबंधों में, किसी व्यक्ति की विशेषताओं में जहां भी अटैच हो गए, वहां नया बंधन बनने शुरू हो गया। विजडम है, अगर ज्ञान बुद्धि में है तो आत्मा कभी अपने आप को बंधने नहीं देगी। हमारी दादी जानकी जी एक बहुत अच्छी बात कहती थी, बहुत अटेंशन रखती हूं मैं कि मैं अभी किसी बंधन में न बंधूं, मैं किसी में फंस न जाऊं। लेकिन एक बात बहुत अटेंशन रहता है, मैं तो किसी में नहीं फंसती हूं, लेकिन ध्यान देती हूं मेरे में कोई न फंस जाए। समझ गए? मेरे में कोई न फंस जाए। कई बार हम इतना स्नेह लुटा देते हैं, बैलेंस तोड़ देते हैं, वो हमारे कोई आधार बना लेता है, यही मेरी दीदी है, यही मेरी दादी है, यही मेरे लिए बाबा है, बाबा को भूल गए और देहधारियों को ही सब कुछ समझ लिया, ये बंधन नया बन गया। एक तरफ हम बंधन काट रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने परिवार में, जिनसे हमें थोड़ा सा भी कुछ स्नेह मिला, पालना मिली, सहयोग मिला, उसको आधार बना लिया, उस पर आधारित हो गए, बंधन बनना शुरू हो गया। और अगर अभी नया बंधन बने तो काटेंगे कब, कौन सा समय आएगा? इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया, समझ दी, पढ़ाया है, आत्मा का पाठ पढ़ाया, अब वापस घर चलने का समय है, अंतिम जन्म है, अंतिम समय चल रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा की इस पाठ को सब याद रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कोई की घड़ी का, कोई की श्वास का भरोसा नहीं, कभी शरीर चला जाए। लेकिन जब तक है इस शरीर के अंदर ध्यान दे, किसी पर भी विशेष प्रभावित न हो जाए, किसी आकर्षण में आकर्षित न हो जाए, न किसी से विशेष अट्रैक्शन है और न किसी से विशेष नफरत है। कई बार कोई कोई के गुण, कोई कोई की सेवाएं, कोई की विशेषताएं अच्छी नहीं लगती, ये ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति से हम नफरत करने लगते हैं, किनारा कर लेते हैं, उनसे बोलचाल बंद हो जाता। वैर भावनाएं रखना, दुश्मनी रखना, उसके अवगुणों को देखना, उसका वर्णन करना, एक नया बंधन क्रिएट हो जाता है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हर आत्मा विशेष है। अगर विजडम है किसी के पास, ज्ञान को यथार्थ समझा है, उसके पास एक ज्ञान का खजाना है, भरपूर है, तो न काहु से दोस्ती, न काहु से वैर, सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, सब भगवान के बच्चे, अच्छे पाठधारी हैं, सब विशेष आत्माएं हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष, अगर कोई विशेष है तो बंधन बन गया। समझ रहे हैं, गहरी बात है ये, समझ रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, विजडम का खजाना दिया, और ऐसा बनाया है जो हम संसार में रहते लेकिन संसार में डूबते नहीं है। सबकी सेवा करो, सबकी पालना करो, सबको ज्ञान सुनाओ, सबको सहयोग दो, लेकिन आधार नहीं बना लेना, आधार बना खुद नहीं बन जाना किसी का। चले गए रोता रहेगा, आपको याद करता रहेगा, जहां अगले जन्म में जाओगे ना, वहां भी चैन से रहने नहीं देगा। बंधन बनाया हुआ है ना, वो याद करेगा, दुखी होगा, परेशान होगा, हाय चला गया छोड़ करके। व्यक्ति को याद नहीं कर रहा, उसकी सेवाओं को याद कर रहा है, उसके सहयोग को याद कर रहा है। मरने के बाद अगर कोई आत्मा को इतना अपने नजदीक ले आया, इतना उसके साथ संबंध बना लिया, तो शरीर छोड़ने के बाद जहां जाओगे वहां पर भी रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, खुद भी दुखी होगे, परिवार को भी दुखी करोगे। बहुत गहरी कर्म फिलॉसफी है, और वो बाबा ने इतना स्पष्ट और सरल शब्दों में सुनाई है। लेकिन कई बार हम लोग ऊपर ऊपर सुन लेते, सुन लिया ठीक है। तो सभी ज्ञानी तो आत्माएं बैठी हैं, सोचो समझो फिर कर्म करो, इसलिए कहते हैं सोच समझ करके करो। बोलने के पहले, सोचने के पहले भी सोचना मेरे साथ क्या जाएगा। कर लिया, हो गया, बोल दिया, और उसके बाद सोचे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, निकल गया, हो गया, उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? वो ज्ञानी है, वो तो अज्ञानी है। करने के बाद, बोलने के बाद फिर पश्चाताप करना, ये अज्ञान की निशानी है। इसलिए हम सबको अपने एक एक कर्म पर, बोल पर, संकल्पों पर, भावनाओं पर बहुत अटेंशन देना, वो ज्ञानी है। हम कहते हैं इसके पास ज्ञान का खजाना है, ज्ञान को इसने समझा है, और ज्ञानी है तो उसके साथ योग, बाबा के साथ लगा हुआ है, योगी है वो। और जहां योग है वहां शक्ति है, उसके पास शक्तियों का खजाना जमा है। ज्ञान से विजडम है, बंधन मुक्त बन गया, और योग से उसके पास पावर आ गई, शक्ति आ गई, क्योंकि सर्वशक्तिमान से कनेक्शन है। बाबा ने हम सब का कनेक्शन अपने साथ जुड़ाया। मन मना भव मध्याजी भव मामे कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, मुझे याद कर। और कोई को याद नहीं करना, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक व्रता, आप सब दादियों को देखना, इतना सब केवा सेवा किया, इतने सब की पालना किया, लेकिन मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, एक वृत्ता बन करके रहे। वृत्ति में कोई देहधारी ने अपने आप तरफ आकर्षित नहीं किया। एक की लगन में मगन, कितनी भी बातें आई, कितनी भी परीक्षाएं आई, परवाह नहीं कि बाबा बैठा है। एक ही मंत्र, बाबा बैठा है। इतना प्यार, इतना निश्चय, इतनी भावना, जहां बाबा बैठा है वहां क्या हो सकता है? कुछ भी, पेपर आने दो। बस बाबा की याद से उनके पास इतना बल आ गया, इतनी शक्ति आ गई, जो उस पेपर को ऐसे सहज रीति से पार करते चले गए। बेफिक्र वासा की स्थिति। ब्रह्मा बाबा की स्थिति देखो, इतनी पेपर, इतने एक के बाद एक पेपर। आज अगर दो चार पेपर आ जाते ना हम लोगों के सामने, तो पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ब्रह्मा बाबा के तन में जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया, उस दिन से पेपर के पर पेपर। तो बाबा कभी कभी हंसते हंसते मुरली में कहते हैं, बच्चे वाट वेंदे ब्राह्मण फात, मना कहने का अर्थ है रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। मेरी इतनी महिमा लोग करते थे, इतना आदर देते थे, सत्कार करते थे समाज के अंदर, लेकिन जिस दिन से शिव बाबा आए उस दिन से गालियों की बौछार होने लगी। ये दादा कहां से जादू सीख के आ गया? कलकत्ता से कहीं काला जादू तो नहीं सीख लिया? जिसको ओम कह करके ऐसे देख लेता, दृष्टि देता, वही स्वर्ग में चला जाता, साक्षात्कार हो जाता। और बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, ब्रह्मा बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता। अब वो ऊपर वाला बैठ के यहां से करा रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन सामने तो यही दिखाई देता है, गालियां तो इसी को मिलेंगी। बहुत सामना करना पड़ा, एक एक चुन, जिनके इतने प्यारे संबंध थे बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के तो लौकिक में भी संबंधी थे, जिनके घरों में बाबा ने अपनी बच्चियों की शादी कराई थी, वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कौन सा ऐसा ज्ञान है? दादा ये कहां से सीख करके आ गया? ये काम महाशत्रु कहता है, हम परिवार वाले हैं, हम घर गृहस्थी हैं, हमने शादी की है, ये कहता है पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कैसे हो सकता है? बाबा के पास आते समझाने की कोशिश, बाबा ज्ञान बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन ये नियम क्यों बता रहे हो जिससे घर में झगड़े हो रहे हैं? बाबा कह रहे बच्ची मैं नहीं बताता हूं, मैं खुद प्रवृत्ति वाला हूं, मैं खुद बच्चे वाला हूं, मैं कैसे कहूंगा? लेकिन लोग तो उसको देख रहे हैं सामने। फिर भी बाबा ने इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया। भगवान कह रहा है काम महाशत्रु है, काम जीते जगत जीत, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो छोड़ो, रास्ता ले लो। लेकिन बाबा का इतना प्यार शिव बाबा से, भगवानों वाच उनके महावाक्य हैं, उन्होंने ये बात कही है, वो शक्ति इतनी योग की थी जो किसी बात में डरे नहीं, बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। इस संसार में बेगम वही रह सकता है, बेफिक्र वही रह सकता है जिसका वो सर्वशक्तिवान से कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है। इंसान क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी, ये बातें परिस्थितियां क्या करेंगी उसका? बाबा कहते थे मैदान में, खेल के मैदान में खिलाड़ी सोचे ये जो बाल फेंक रहा है वो मेरी तरफ ना आए, इसकी तरफ चला जाए, तो खिलाड़ी कैसा, वो क्या सोचता है? अरे बॉल आए तो मैं इसको किक मारूं और नंबर बना लूं। तो आप सब परिस्थितियों से डरते तो नहीं हो? क्यों आ गया, कहां से आ गया, कहीं तो पता क्या, मेरे सामने क्यों आ गया, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया पाप जो मेरे आगे ये बातें आती हैं? अरे बहुत बाबा कहता भाग्यवान हो, तेरे आगे आती है, तेरे नंबर बढ़ रहे हैं आगे। डरो नहीं, घबराओ नहीं, बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। अगर वो खजाना है योग का किसी के पास, तो पावर है, शक्ति है, बल है, और ऐसी बलवान आत्माएं, माया हो या प्रकृति हो, कोई भी प्रकार की परिस्थितियां आए, वो निर्भय है, निश्चिंत है, न्यारा है, प्यारा है। देखना योग का बल जमा किया है, ऐसा योग है, भट्टियां तो कर लेते हैं, बल है। अगर बल है तो कभी भी किसी भी बात में मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बाबा मेरे साथ है। कौन है? हर हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है। उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। जैसे जब फ्लाइट उड़ाते हैं ना, फ्लाइट उड़ रही है, जहां पर उसको पहुंचना है वहां से वो सब डायरेक्शन ले रहा है। जिधर से उड़ा है वो भी देख रहा है किधर जा रहा है, और जहां उसको उतरना है वो भी देख रहा है कितनी हाइट पर है, किस स्पीड में है। अगर कनेक्शन थोड़ा भी कट हो जाए तो क्या कहते हैं, अभी डेंजर है, कहीं लुढ़क जाएगा, कहीं भटक जाएगा, कनेक्शन जुटा हुआ है। तो आप सबका कनेक्शन जुटा हुआ है, ऐसा कनेक्शन जुटा हुआ है, कहीं भी रहो, कहीं भी चलो, कहीं भी जाओ, बस बाबा के साथ कनेक्ट है, यही योग है। ऐसे बैठ करके आंख बंद करके नहीं, ये झुटका खाओ और योग करो, 24 घंटे बाबा के साथ, टावर के साथ कनेक्ट है हम सभी। उसकी शक्तियां आ रही हैं, उससे हम अलग हो ही नहीं सकते, वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं, इसको योग कहते हैं। ऐसा योग बाबा ने सिखाया। अच्छे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, बहुत दिल से कहो मेरा बाबा, बस मैं आ जाऊंगा तेरे साथ। तो योग का बल है तो हर प्रकार की शक्ति है, और उस शक्ति के आधार से हर परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेता। आप एक बात यहां से नोट करके जाना, कोई भी बड़ा बड़ा पेपर आए, आएगा सबके सामने, इसमें बाबा कहता छूट नहीं है, सबके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में हम सब ने कुछ न कुछ ऐसी गलतियां की हैं, देहमान के कारण की हैं, और ये अंतिम समय सब बातों को चुकतू करने का है। चाहे देह के रूप में, बीमारियों के रूप में बातें आती हैं, चाहे संस्कारों के रूप में आती हैं, चाहे धन के रूप में आती है, संबंधों में टकराव के रूप में आती है, भटकती हुई आत्माओं के वार के रूप में आती है। बाबा कहते बच्चे आती हैं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आई हैं, बहुत सरलता से बाबा का साथ लो, शक्ति लो और पार करो। अगर तुमने उसका चिंतन किया और वर्णन किया तो एक छोटी सी बात आपके आगे पहाड़ बन जाएगा। चिंतन वर्णन नहीं करो, बातें आई हैं, बाबा का साथ लो, योग में बैठ जाओ, बाबा को बोलो बाबा तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं। अगर जरा भी किसी देहधारी को उसको उस समय याद कर लिया तो बाबा फिर मुस्कुराएगा आगे बैठ करके, अलग से ले लो मदद। बहुत चतुर सुजान है, भोला नाथ है, लेकिन बहुत चतुर है वो, ध्यान देना। भोलों का नाथ है, बुद्धिमानों का नाथ नहीं हो, बहुत सच्चे हैं, भोले हैं, बाबा के ऊपर न्योछावर हैं, सच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, बस बाबा उसके साथ है। हमारी दीदी दादियों ने इतना निश्चय बुद्धियों के भावना से कोई भी बातें हैं इधर उधर नहीं कहा, बाबा को याद करो, योग करो, बाबा ठीक कर गया, बाबा है। यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया, कितने हिलोरे आए। दादी जी हमेशा मुस्कुराते एक बात कहती थी, आप हम सभी तो नैया में बैठे हैं ना, सच की नैया में बैठे हैं, तूफान आएंगे, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। किवैया कौन? स्वयं भगवान इसका किवैया है, डुबो सकता है कोई इसको? कितनी भी लहरें आए और उसका आनंद लो लहरों का, डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्या क्यों कैसे में नहीं जाना, नहीं तो व्यर्थ की क्यों लग जाएगी। योग की शक्ति से बहुत असंभव बात भी संभव हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा का साथ ले लो, सूली कांटा बन जाती है, कांटे जैसे आएगा, हिसाब किताब आएगा, ऐसे सहज पार हो जाएगा। नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, आया, लेकिन बाबा की याद से उसकी शक्ति से सहज पार कर लिया। तो योग बाबा ने हमें सिखाया, मुरली के माध्यम से योग की शक्ति दी, योग का बल जमा किया और फिर धारणाएं से गुणवान बना दिया, सब दिव्य गुण जिससे देवता बन सके। कहते तो देवता है, ये तो इसी समय देवता है। कौन से ऐसे लक्षण है जो बताते हैं देवता है? बोलो, दातापन के संस्कार है, वो देवता नहीं है। ये मुझे मान दे, ये मुझे स्नेह दे, ये मुझे पूछे, इसका वो भिखारी नहीं है, वो खुद देने वाला है। आप सब इस बात पर बहुत अंडरलाइन करना, किसी से भी मुझे कोई भी न स्थूल न सूक्ष्म कोई भी वस्तु कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, बाबा से सब लेना है, एक से लेना है और जो एक से मिला है वही सबको देना है। इधर से पढ़ लिया, उधर से किताबें पढ़ लिया, उधर से स्टोरी पढ़ लिया, क्लास करा रहे हैं, किसका दे रहे हैं हम सब? किसका देते हैं? बाबा का दे रहे हैं या व्यक्तियों का दे रहे हैं? क्यों? बाबा ने इतना दिया है एक ही मुरली पढ़ करके, आज दादी जान की कितनी क्लासेस कराई। मैं तो कहता हूं जितना बाबा ने सुनाया ना उससे कई गुना ज्यादा दादी की क्लासेस है। कहां से लिया? स्कूल में तो गई नहीं, तीन क्लास पढ़ी, लेकिन मुरलियां पढ़ पढ़ करके उसकी गहराई में जा करके उसका चिंतन करके मैंने उनकी क्लासेस 73 से टाइप करना शुरू किया। मालूम है दो सखियां थी, दीदी की एक विशेष शिक्षा थी हम सबको, खास बहनों को, सखी बनाना सहेली नहीं बनाना। तो एक दिन दीदी से पूछा, दीदी सखी और सहेली में भी अंतर होता है क्या? होता है, नहीं होता है? क्या होता है बिना, क्या होता है सखी और सहेली में क्या अंतर होता है? तो दोस्त और मित्र में भी अंतर होता होगा ना। सुदामा की दोस्ती भी थी या मित्रता थी भगवान के साथ? मित्र था वो। क्या होता है जहां दोस्ती है, जहां सहेलियां मिल जाती है, वहां पर चिंतन, प्रदर्शन, इधर उधर की व्यर्थ बातें, दोस्त मिल गए बस। एक जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था, बहुत प्यार का लेख था, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। दोस्तों से बचाना, इतना अच्छा लेख था कि जो दोस्त मिल गया वो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, ये ऐसे है वो ऐसे है, ये करते वो, कभी वो उन्नति की बात ही नहीं करेगा, कभी किसी की विशेषताओं पर वर्णन ही नहीं करेगा। ऐसे सहेलियां मिल गई तो वही पर चिंतन पर दर्शन। तो दादी दीदी की सहेली जानकी दादी बहुत फेवरेट सखी थी, सहेली नहीं थी, सखी। और सखी बनाना बहुत आता था दीदी को, कन्याएं आए, अरे तू तो मेरी सखी है, इधर आ, और सखी बना के रूप ध्यान ज्ञान की करना। आज बाबा ने ये मुरली में कहा, आज ये कहा नए नए ढंग से, और जानकी दादी के साथ घंटों ऐसे बैठ जाती थी। हम कभी पहुंचते, दादी आप तो बहुत देर से दीदी बैठी, अरे सखी स्नेह में बैठे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं, ज्ञान की रूह रिहान, बाबा की विशेषताएं, बाबा ऐसे थे, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये किया, उसके सिवाय और कोई बात करना ही नहीं। फिर कहती थी दादी जानकी की जो क्लासेस चलती है ना, किसी भी क्लास में, चाहे वो कितनी प्राइवेट क्लास हो, मेरे को बिठाती बुलाती थी, कहती जाओ तुम पीछे बैठ जा, जाके चुपचाप नोट्स ले लेना, क्या क्या क्लास चलती है फिर टाइप करके मेरे को देना। दीदी खास जानकी दादी की क्लास में भेजती थी, और वो इतना अच्छा मनन चिंतन करना, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाना। कहां से लिया? एक बाबा से, केवल एक मुरली से। उनके अंदर वो दिव्यता आ गई। हमेशा दादी के लिए बाबा ने कहा यही बच्ची है जो कर्मों से गुणों का दान करती, वो दिव्यता आती गई, वो अलौकिकता आती गई, गुणों का दान किया। 104 साल की उम्र में भी मुरली पढ़ना नहीं छोड़ा, अमृत वेला नहीं छोड़ा, और कुछ भी अगर हमने टाइप करके दिया भेजा, मान लो हम नहीं मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में है, उसका तुरंत जवाब का देना पढ़ करके, राजू तुमने बहुत अच्छा लिखा। लास्ट में फरवरी के अंदर, मार्च में शरीर छोड़ा है ना, फरवरी के अंदर मैं विशाखापट्टनम विजयवाड़ा गया था और दादी अहमदाबाद में ट्रीटमेंट के लिए गई थी। मेरे को फोन लगा दिया, ए राजू तुम इधर आओ। सब इन कहती दादी आप अहमदाबाद में है ना, अरे उसको बुलाओ ना, मेरे कुछ काम करना है, रूरियान करनी उसे। तो मेरे पास फोन आया, मैं दादी कल नहीं आऊंगा परसों आऊंगा। अरे परसों आएगा, क्योंकि मेरी टिकट विजयवाड़ा से थी दो दिन के बाद। दीदी दादी परसों मिलूंगा अहमदाबाद में आके। इतना कहा और दादी चुप हो गई, क्योंकि उनको पता था अभी विदाई का समय आ गया। फिर भी कहा अच्छा ठीक है, तुम सुन मेरी बात, तुमने जो फरवरी का, मार्च और अप्रैल का पत्र पुष्प लिखा है मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छा, इसमें ये भी लिखना, इसमें ये भी लिखना। मैंने इतना एक्यूरेट, इतना हर बात पर ध्यान, विजडम थी उनके पास, और वो गुणों का दान करती थी, उनके जीवन की धारणाएं थी, पत्नी और करनी समान थी, किसी में अटैच नहीं, और सदा एकदम बाबा 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 कह करके, और जो संकल्प लिए थे, आपको बताऊं जो संकल्प कभी कभी मेरे साथ शेयर करती थी वो प्रैक्टिकल करके लास्ट में गई। सुना होगा हमने एक बार दादी के साथ बैठे थे, कहती है तुम डायरी पेन लाए, हमने कहा हाँ दादी, तुम मेरा विल लिखो, विल आपके पास क्या है, क्या विल करना चाहती हो। कहती तुम लिख, मैं लिखाती हूं मेरा विल। मैंने लिखा जब मैं शरीर छोड़ू तो मेरे ऊपर कोई भी फूल माला नहीं चाहे। मैंने कहा दादी ऐसा कैसे होगा, आप क्या लिखवाएंगे मेरे से, आप मुख्य प्रशासक हैं इस समय, आप शरीर छोड़ेंगे कोई फूल नहीं चाहेगा। अरे तुम लिख। फिर कोई को कहीं भी किसी स्थान से मेरे अर्थी के पास आने की जरूरत नहीं, ये बात मेरे को विल लिखाई, मेरे पास लिखी है, कोई को आने की जरूरत नहीं है, शरीर छोड़ने पर कोई खर्चा नहीं करना। और ऐसे दिन पर शरीर छोड़ा, लॉकडाउन लगा 20 मार्च को और 27 को, इतना लॉकडाउन हाई था जो यहां से हॉस्पिटल से चार धाम कराने के लिए भी मुश्किल था, कहीं नहीं कोई देख सकता, सामने नहीं आ सकता। फिर भी मान गए, ऑफिसर स्कीम की हेड है तो चार धाम ले गए, केवल 20 लोगों को छुट्टी थी। क्या विल पावर थी, ये विल किया, विल पावर थी, शक्ति थी उनके अंदर संकल्प की, कोई फूल माला नहीं। लास्ट में जब कोई को नहीं जाने देते ना, 3000 लोग बैठे थे शांतिवन में, पुलिस वाले बिल्कुल कोई को यहां सामने नहीं आना, सब कमरों में बंद रहो। मैं गया, हमने कहा मेरे को तो जाने दो लास्ट। तो एक चंदन की माला लेके गया और उनके सामने खड़े होके कहा देखो दादी आपने माला के लिए मना किया, फूल माला वो नहीं है, चंदन की माला चढ़ाऊंगा। ऐसी दादियां थी जिनके गुण जीवन में थे, हर बात में जो संकल्प किया जो बोला हो गया। ऐसे थोड़ी भी देश सेवा हुई, आज लंदन देखो, अमेरिका देखो, बड़े बड़े डिटेल सेंटर देखो, क्या त्याग है, क्या उनके संकल्प, एक छोटे से स्थान पर रह करके उनका स्वरूप बन करके रहे। मुझे क्या चाहिए, मैं तो बिन कौड़ी बासता हूं, सफेद कपड़े, खीसा खाली, और मैं विश्व की मालिक, ये नशा था उनको। एक पैसा नहीं रखती हूं और पूरे विश्व में सेवा कर रही हूं, संकल्प भी सिद्ध हो गए, त्याग की मूर्ति। एक छोटे से कमरे में रह करके और 7 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना दिया लंदन के अंदर, ऑक्सफर्ड में, अमेरिका में पांव रखा, वहां पीस विलेज 300 एकड़ में बन गया। जो संकल्प किया सिद्धि स्वरूप बन गई। धारणाओं से सेवा की, ज्ञान सुनाया नहीं, सिर्फ धारणाएं थी जीवन में। संकल्प पवित्र थे, शुद्ध थे, बाबा पर समर्पित थे, जो बाबा करा। ये है मुरली का सार अपने जीवन में, यह है खजाना। तो धारणाओं से गुणों का खजाना मिल गया और जितनी सेवाएं की उतनी दुआओं का खजाना मिल गया। ज्ञान से विजडम मिली, बंधन मुक्त आत्मा बनी। योग से शक्ति मिली, सतो प्रधान आत्मा बन गई। धारणाओं से गुण मिले, देव आत्मा बन गई। और सेवाओं से दुआएं मिली, राजा बन गई, राज्य अधिकारी बन गई। ये है मुरली का एसेंस। हम सब मुरली पढ़ रहे हैं, वही मुरली तौसी तक तो बिठा देती, और उसी मुरली को पढ़ने वाले दास दासी नौकर चाकर बन जाते, और कोई पढ़ाई नहीं है। चाहे वो 75-80 साल से ज्ञान में चल रहा है, चाहे वो 2 मास का बच्चा है, अगर उसने मुरली को सही समझा तो कहां से कहां पहुंच जाता है। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, एक ही मुरली। कई बार कहता है मैं स्पेशल ट्यूशन भी नहीं देता। ट्यूशन भी किसी को अलग से नहीं दिया, लेकिन पढ़ने वालों ने जितना उस पर मनन किया, चिंतन किया, उसको अपने स्वरूप में लाया, उसकी गहराई में गए, वो महान बन गए। तो हम सब बाबा के बच्चे मुरली को यथार्थ समझे और मुरली का इतना कदर करें, इतनी वैल्यू रखें, यही मुरली हमें बहुत महान बना सकती है। ये एक प्रश्न बहुत अच्छा लीलाबन पूछ रहे हैं। आजकल की माया शुरू हुई है कोविड से। कोविड आया ना, तो एक ऑनलाइन की माया शुरू हुई थी। तो बहुत अच्छी चीज उस समय कोविड में बहुत फायदा किया साइंस ने। मेरे भी रोज 4-5 क्लास होते थे। यहाँ बैठे मैंने 1.5-2 साल में कोविड के समय पूरे विश्व का भ्रमण किया। कोई ऐसा सेंटर विश्व का नहीं जहाँ मेरे क्लासेज न हुए होंगे। रोज यहाँ यहाँ मुरली सुनाओ, यहाँ क्लास करा दो, यहाँ ये कर दो। ये बहुत सुख दिया ऑनलाइन ने। उसके बाद आलसी लोगों को सहारा मिल गया। सेंटर खुले, बहने सेंटर पर आने की छुट्टी देने लगी, आओ भाई जी आओ आओ। नहीं नहीं दीदी, हम तो ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं, हम तो दिल्ली आशा दीदी की मुरली सुन लेते हैं, हम तो मधुबन की मुरली सुन लेते हैं। अरे हम तो मुरली के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ना सेंटर पर आना, ना अच्छे वातावरण में आना, ना संग में आना, कहां से उन्नति होगी आत्मा की? व्हाट्सएप पर सुनने से हो जाएगी क्या? जहां पर डायरेक्ट भगवान की किरणें हैं, जहां पर इतना सुंदर वातावरण योग का बना हुआ है, जहां पर पवित्र बहने पवित्र दृष्टि दे रही हैं, अपने हाथों से बाबा का प्रसाद खिला रही हैं, टोली दे रही हैं, हम उस सबसे वंचित होकर के हम तो ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं, इसकी जरूरत है क्या? ठीक है जो बुढ़े हैं, कोई बंधन है, नहीं चल सकते, नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत अच्छी साधन बाबा ने दिया, लेकिन जो कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, सब कुछ फ्री है, वो भी वो आलस्य के कारण, अलबेलेपन के कारण सब प्रकार की भाग्य से वंचित हो गए। कौन कौन ऐसे हैं जो सेंटर पर नहीं जाते, मुरली अपने मोबाइल में सुन लेते हैं, टीवी पर सुन लेते हैं, हाथ उठा रहे उठा रहे हैं, सच्चे हैं, सच्चाई से उठा, लेकिन यहां से कुछ संकल्प करके जाना, ठीक है? करेंगे संकल्प। देखो आप सामने क्लास सुन रहे हो, यही क्लास आप YouTube पर सुनना, मजा आएगा? सुनते हैं, लेकिन कोई जरूरत पड़ती है मदद करते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट सुनने का फायदा है ना, बता दिया था पहले ही मैंने, बाबा कहता डायरेक्ट नंबर 1, टेप से सुना नंबर 2, लिखत में पढ़ा नंबर 3। तो आप सब पहले नंबर वाले बनो, डायरेक्ट बाबा की मुरली सेवा केंद्र पर जाके सुनो। मैंने बहुत प्यार से अच्छा चिंतन करके बाबा की मुरली अपने जीवन में धारण करके सुना रही हैं, उसका फायदा उठाओ और उससे अपनी स्थिति बनाओ, क्योंकि वहाँ का संगठन, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का बाबा का विशेष ऊपर से सकाश आपकी उन्नति का बहुत अच्छा साधन है। बाकी मुरली कैसे सुनते हैं, जब मैं क्लास कराता था ना, कभी भी कराना पड़ता है कभी कभी ऑनलाइन, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा वीडियो घुमाओ, देखूँ मैं कैसे सुन रहे हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे वीडियो घुमा दिया, ऐसे अचानक बोला, तो सबने वीडियो घुमाई, तो एक माता अपने बच्चे को ऐसे लेकर के झाड़ू लगा रही है, मुरली सुन रही है। मैं बहुत अच्छी तरह से मुरली, हमने मुरली सुनी, कोई है बिस्तर से उठे, स्नान भी नहीं किया है, रजाई पड़ी है, ऐसे बैठे हैं और मुरली सुन रहे हैं। भाई हम तो रेगुलर मुरली सुनते हैं। अरे स्टूडेंट लाइफ कहाँ गई, न स्नान किया है न मुंह धोया है और ऐसे भगवान की मुरली सुन रहे हो, कानों में जाएगी क्या? कई बार बाबा कहते हैं ये भगवान का ज्ञान शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इतना ऊंचा ज्ञान इस बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि कैसी आपकी है, अगर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा है, अगर शरीर स्वच्छ नहीं है, वस्त्र स्वच्छ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, एक भी बात भगवान की आपके कानों में भले चली जाए धारण नहीं होगी। बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत पवित्र परम पवित्र परमात्मा की मुरली है, और वो मुरली ऐसे सहज नहीं है जो धारण हो जाए। इसलिए आप सब बहुत नियम को, जो हमारी ईश्वरीय कायदे बने, उसको पालन करके अपने जीवन को महान बनाओ। पवित्र और योगी तो बने हैं, लेकिन जितनी अच्छी तरह से हमारी स्टडी होगी, जितना हम मुरली के खजाने को अपने जीवन में उतार लेंगे, माला माल बन जाएंगे। कभी कभी मैं पता ही एक नशा रखता हूँ, शायद जितने ब्राह्मण हैं उसमें एक ऐसी आत्मा को बाबा ने चुना जिसके पास पूरा कुबेर का खजाना है। कुबेर का खजाना सुना ना, सब कुछ है, माना कराची से लेकर के जितना कुछ भगवान ने सुनाया होगा वो भगवान ने मेरे हाथ में दिया है, और उसका पर्सनल स्टडी करना, उसको सबके लिए भेजना, सबके प्रति कुछ सोचना। अभी से मेरी प्लानिंग जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, अभी हम 3 मास का होमवर्क ब्राह्मणों के लिए बना रहे, पूरे ब्राह्मणों के लिए। ये कैसे संकल्प आया, अभी युद्ध का समय है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, ऐसे समय पर अभी बाह्य सेवाएं बंद करके तपस्या करो, और वो तपस्या के लिए हम होमवर्क भेजेंगे। मम्मा ने जून में किया, संपन्न बनी 24 जून, दीदी मनमोहिनी 28 जुलाई को अभ्यक्त हुई, और दादी प्रकाश मणि 25 अगस्त को अभ्यक्त हुई। जून, जुलाई, अगस्त, ये तीनों बहुत विशेष आत्माएं हैं, और उनकी स्मृति के 3 मास आ रहे हैं सामने। तो मई मास में अगर हम तैयारी करेंगे तो आप सबको पूरा ब्राह्मण परिवार एक हो जाए, और एक जैसे संकल्प से पुरुषार्थ करेगा, तो मैं समझता हूँ वो ज्वाला जो है संकल्प की शक्ति ज्वाला बनेगी, और उससे बाबा का नाम रोशन होगा, प्रत्यक्षता होगी। अब प्रत्यक्षता नहीं होगी तो कब होगी बताओ, और कोई समय आएगा क्या? इसलिए जो भी रहा हुआ कार्य है, बाबा का संपन्न हो, बाबा प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष होगा तो परिवर्तन होगा, नई दुनिया आएगी। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक गेट नहीं खुलेगा, परम धाम का गेट तभी खुलेगा जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। आ गया, यही है, यही है, अब जा रहा है, जाने का समय आ गया बाबा के। तो हम सबको अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ठीक है? लक्ष्य रख के जाना, सिर्फ सुन के नहीं, भट्टी करके नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को इतना महान बनाए जो बाबा को लोग कहें कि सचमुच इनको भगवान मिला है। आप कहोगे भगवान मिला, कहेगा इन्हीं के लिए फ्री बैठा है वो, लेकिन आपको देख करके कहें इतना निश्चिंत, इतना खुशनुमा, इतनी परिस्थितियों के बीच में अच्छा लडोल एक रस, ऐसे ऐसे बन गए, किसने इनको ऐसा बना दिया, तो ज्योति स्वरूप बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, बनाने वाला दिखाई देने लगेगा। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष जीवन ही सबके लिए प्रमाण हो जाए। तो ऐसी जीवन बाबा ने बनाई है, और आज नहीं तो कल लोग पहचानेंगे। कहने तो लगे हैं बहुत अच्छे, लेकिन साथ साथ हमारी जब ऐसी पवित्र योगी बहुत खुशनुमा बिल्कुल निश्चिंत जीवन देखेंगे, तब बाबा हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। के ओम शांति। एक बात और बोल रही है कि मई मास हमारे जगदीश भाई जी का, जगदीश भाई जी की एक बात सुना दिया था ना, 12 मई 2001 को जगदीश भाई जी अव्यक्त हुए थे। इसी सुखधाम में कमरा है, हम गए थे लास्ट में, वहां ही शरीर छोड़ा था जी। शनिवार तो दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन 12 मई, तो अभी मई मास चल रहा है। और एक दूसरी बात सुना, तो मई मास बहुत विशेष मास है। आज हमारे यज्ञ को 75 साल माउंट आबू में हो गए, 5 मई 1950 को बाबा ने आबू को चुना, कराची से यज्ञ 5/5/50 को आबू में आया, ब्रज कोठी में, भरतपुर की कोठी, भरतपुर की टीचर बैठी ना, भरतपुर राजा की कोठी में बाबा आए। और आज 5/5/25, दो दिन के बाद आ जाएगा, कितना हो गया 75, अमृत काल, अमृत महोत्सव हो गया यज्ञ को, यज्ञ को भारत में यहाँ आबू में। और हमारे जगदीश भाई जी जो यज्ञ के पिल्लर थे, आधार स्तंभ थे, जितना साहित्य लिखा, जितना इस यज्ञ को विस्तार दिया, इतने सारे विंग्स बनाए, इतनी सेवाओं की प्लानिंग की, बहुत कुछ उन्होंने यज्ञ को विस्तार में लाने के लिए प्रयास किए, दिन रात इतनी मेहनत, डिग्री पार्ट के समय आए थे, समर्पित हो गए थे, प्रोफेसर प्रिंसिपल समर्पित हो गए छोटी आयु में, ज्ञान मिला, निश्चय हुआ, एक थक से समर्पित कर दिया। और समर्पित होने के बाद बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, जैसे रखे, उस समय पुराने पुराने पैंट और बूशर्ट मिलते थे, हम लोगों को भी मिले हैं, वही पहन के हम जाते थे। और उनके जेब में एक सुई धागा रहता था, क्योंकि बड़े लंबे चौड़े थे, शरीर से बड़े थे, और अगर छोटा होता था और बैठ जाते तो फट जाता था, तो उसी समय कोने में जाके सुई धागा निकाल के सिलाई कर लेते तो पहन लेते। बहुत त्याग की मूर्ति बन करके, बहनों को जब बहुत गर्मी पड़ती थी ना दिल्ली में, तो इनको ठंडा कुछ पिलाया जाए तो जाते थे बर्फ वाले के पास, और बर्फ पूछते थे, कुछ बोलता था, अरे भाई साहब जितना चाहिए ले जाओ, तो पूरी सिल्ली अपने कंधे पर उठा करके सेंटर पर ले आते थे बर्फ की, बहनों को ठंडा पानी पिलाना, बहनों को ठंडा शरबत पिलाना। वो थे जगदीश भाई, बहुत त्याग मूर्ति, तपस्वी मूर्ति। और फिर उनकी बुद्धि, हम कहते थे सभी बाबा के बच्चे 7 फुट लंबी बुद्धि है, इतनी प्लानिंग, इतनी भविष्य दृष्टा। एक रमणीक बात सुनाता हूँ जगदीश भाई की। एक बार विदेश में गए, कालों के देश में, इधर अफ्रीका की तरफ, और उनको पता था कि यहाँ पर बहुत डर है, बहुत भय है, लेकिन सेंटर के बाजू में जाने में क्या हर्जा, चक्कर लगाते थे भोजन के बाद, अंधेरा था, थोड़ा लंबा चले गए सेंटर के आगे, कुछ काले लोगों ने उनको घेर लिया, सामने आ गए, और उनके पास कुछ नहीं था, खाली थे। और जो खाली होता था तो उनका नियम था कि अगर कुछ कुछ नहीं दिया तो मार दो, अगर लिफाफा दे दिया तो छोड़ देते थे, पैसा चाहिए उनको। अब फंस गए, कुछ भी लेके नहीं चले थे, ऐसे खाली घूमने गए थे। तो बात करते करते वो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते थे, वो भी काले लोग, तो उनको बोला कि तुमने भारत का गजानन डांस नहीं, इसको बोलते हैं अब आपके यहाँ जो बोलते हैं नृत्य, कौन सा, भरतनाट्यम, आपको भारत का भरतनाट्यम का पता है? उन लोगों से पूछा, कहता क्या होता है वो, कहता ऐसा है मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, लेकिन जैसे मैं करूँगा ऐसे आप सब करो मेरे साथ। अब उनको उलझाया उसमें बातों में, कि अगर आप देखना चाहो तो ऐसा एक सिस्टम है हमारे इंडिया का, मैं इंडिया से आया हूँ, वहां पर अगर एक करता है ना तो सबको करना पड़ता है, तो आप सब करेंगे? तो बोला हाँ करके दिखाओ। तो जगदीश भाई ने अपना डांस शुरू कर दिया आगे आगे और कहा मेरे को फॉलो करो, और बहुत स्पीड में डांस करना शुरू किया। और जब वो डांस स्पीड में करने लगे तो सब मगन हो गए और चुपचाप कैसे खिसक गए, भाग गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। वो देखते रहे, देखा क्या होगा पता ही नहीं उनको, कब कब उनका डांस पूरा हुआ हो, वो चुपचाप वहां से खिसक के चले। ऐसी ऐसी बुद्धि बहुत विशाल, मतलब समय पर बुद्धि निर्णय करे अब क्या करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं। वैसे जगदीश भाई की बहुत सारी कहानियां हैं, यज्ञ में रहे हैं, तो आप सभी ऐसे दिन भी आए हो, मई मास है तो यज्ञ का अमृत महोत्सव है, जगदीश जी का स्मृति मास है, उनका साहित्य ही हमारे यज्ञ का विस्तार है, कितनी सारा इंग्लिश हिंदी बहुत सारा सार गीता का लिखा है उन्होंने जी, 200 किताबें लिखी है। और जब पहली किताब लिखती थी तो बहुत पेपर आया था, जब यहाँ आए ना बहुत बाबा परीक्षा लेता था, ऐसे नहीं निश्चय कराता, बहुत परीक्षा लेता था, बुद्धि का अहंकार तो नहीं है, निश्चय बुद्धि तो एक ढक से हो गए थे, कल्प वृक्ष का चित्र देख करके ही कहा ये ज्ञान साधारण नहीं है, ये भगवान ही दे सकता है। तो बहने बड़ी मुश्किल से डर डर के लाई उनको, क्योंकि बहुत बुद्धि, बहुत तेज प्रश्न थे उनके, कहीं बाबा से प्रश्न उत्तर न कर ले। लेकिन उसका बाबा में तो बहुत फेथ हो गया। अब बाबा जब मिले ना उसको, तो बाबा पता क्या कर रहे थे, एक निक्कर पहने हुए थे बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा, और रोड पर कंक्रीट को कूट रहे थे ऐसे ऐसे धूमर से। अब ये जब पहुंचे, बहने दीदी लेकर के जब पहुंची, तो बाबा को देखा इसने, बाप बताया नहीं है बाबा है, लेकिन पहचान लिया यही हो सकता है, क्योंकि तो बाबा की पर्सनैलिटी तो अपनी थी, लेकिन काम बिल्कुल साधारण, रोड कूट रहे थे ब्रजकोटी में उधर। तो जब चला देखा तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चू आ गया, हाँ जाओ इसको कमरे में ले जाओ, फ्रेश होकर के फिर मिलेंगे बाबा। अब उसको ले गए, बाबा को ऐसे रूप में देखा, उसने लिखा है अपने अनुभव में जगदीश भाई ने। तो जब बाबा गया तो तैयार होकर के जब आया तो बाबा ने कमरे में बुलाया, और आते ही बाबा को पकड़ लिया, गोदी में चला गया, निश्चय हो गया उसको यही बाबा है, भगवान है। फिर उसने बाबा ने बहुत प्यार से कहा अच्छा बच्चू वहां पर ना, फिर कहा लिख के ले आओ एक कुछ, तुम लिखना अच्छा जानता ना, प्रोफेसर है, एक मैटर लिखो, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, एक लिख करके ले आओ। मैटर लिख के बहुत अच्छी तरह से लिख के लाया, जितना समझा था ज्ञान, तो लिख के ले आया। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची मम्मा को दो, मम्मा पढ़ करके पास करेंगे। हम मम्मा भी हिंदी जो पावरफुल हिंदी उनकी थी अच्छी, थोड़ा बहुत अपने शब्द डाल दिए, मम्मा सिंधी थी पंजाबी थी, कुछ उन्होंने और शब्द डाल दिए। फिर वो जब फेयर करके लाया दोबारा, तो अच्छा दादी को दो, इसको दो, उसको दो, 8-10 के पास भेजा, और सब ने अपना अपना करेक्शन लगा दिया। और जब लगाए तो फेयर करके लाए, फिर फेयर करे, फिर फेयर करे, लास्ट में बाबा ने कहा शाम को बुलाया बच्चे लिख लिया? तो कहता बाबा लिख क्या है, लिखा तो है लेकिन जो लिखा उसमें कोई भाव नहीं, कोई सार नहीं रहा, सब खत्म हो गया। क्यों? आपने कहा उसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, उसको, तो सब ने अपनी अपनी एडिशन कर दी, करेक्शन कर दी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुमको क्या लगा, ये ठीक किया बहनों ने? बोला बाबा ने जैसे कहा वैसे हमने कर दिया। बाबा ने बच्चे तुमने जो पहले लिखा ना वही पास हो गया, अब तुमको वरदान मिल गया, तुम जो लिखेगा वो पास हो, सत्य वचन। और उसके बाद उन्होंने जो लिखा साहित्य, बाबा ने कोई करेक्शन नहीं किया, कोई ने कोई करेक्शन नहीं किया, लेकिन वरदान भगवान का उनको मिला। और उसके बाद उन्होंने सब प्रकार का साहित्य लिखा। चलो ओके, ओम शांति।
ऐसा लग रहा था जैसे कि 88 वर्षों का खजाने और उसके अनमोल रत्न भाई साहब की बुद्धि रूपी तिजोरी से मुख के द्वारा बरस रहे थे। सबकी झोली भर गई ज्ञान रत्नों से, जो कहते हैं हाँ जी। साथ ही साथ आपने वर्तमान शिक्षा को प्रैक्टिकल रूप दिया कि रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा, मुरली का जो सबसे बड़ा प्रमाण, दादी जानकी जी को आपने चारों विषयों के अनुरूप रूपांतरित करके हमारे समक्ष रखा कि ये मुरली का खजाना क्या नहीं दे सकता स्थूल और सूक्ष्म में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी परम श्रद्धेय विश्व वंदनीय दादियां, और खास तौर से आपने दादी जानकी जी को रिकग्नाइज किया। आदरणीय भ्राता जी, बहुत सारे भाई बहनों ने इसमें भ्राता जगदीश जी को नहीं देखा, लेकिन आज आपको अपने बीच में पाकर ऐसा लग रहा था जो आपने भ्राता जगदीश जी के स्मरण सुनाए कि आप में भी वो सारे लक्षण विराजमान हैं। आप दधीची ऋषि मिसल और त्याग तपस्या के धनी और यज्ञ के बहुत गहरे शुभचिंतक हैं, और छोटी बड़ी सभी बहनों को सहयोग और सम्मान और स्नेह सदैव यज्ञ की विकास के लिए देते रहते हैं। ऐसे मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर भ्राता राजू जी से हम सभी ब्रह्मावत्स यज्ञ के ऐसे ही खजानों के मालिक बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, इस संकल्प के साथ भ्राता जी का हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपके मार्गदर्शन का प्रतीक्षा करते रहेंगे कि जो आपने हमें विशेष आज्ञा दी, सेवा केंद्र जो बाबा के तीर्थ स्थान होते हैं, उन तीर्थ स्थान पर जाकर बाबा की मुरली के खजाने को प्राप्त करेंगे। ये संकल्प का भी हम शुक्रिया भ्राता जी को देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।